अगर मैं ये कहूँ कि हम इंसान मतलब मंगल ग्रह की उबड़ खाबड़ सतह के बारे में उससे कहीं ज्यादा जानते हैं जितना हम ठीक अपने पैरों के नीचे मौजूद जमीन के बारे में जानते हैं, तो शायद ये एक मजाक लगेगा।
हाँ हाँ पहली बार सुनने में तो बिल्कुल मजाक ही लगेगा।
लेकिन हकीकत तो यही है ना। मतलब अंतरिक्ष में हमने दूरबीनें भेज दी, रोवर भेज दिए, लेकिन जब बात पृथ्वी के अंदर झांकने की आती है तो हमारी सीमा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है।
ये एक बहुत ही शानदार तुलना है, क्योंकि जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो ब्रह्मांड एक तरह से पारदर्शी है।
प्रकाश हम तक पहुंचता है।
बिल्कुल, लेकिन हमारे पैरों के नीचे का जो हिस्सा है वो तो अपारदर्शी चट्टानों और भारी धातुओं का एक अभेद्य किला है। हमारे पास पृथ्वी को किसी एक्सरे मशीन में डालने का तो कोई साधन है नहीं।
और यही बात मुझे आज की इस चर्चा के लिए पढ़े गए शोध पत्रों और नोट्स में सबसे ज्यादा चौंका रही थी। हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं, पृथ्वी की संरचना, तो मैंने पढ़ा कि पृथ्वी का केंद्र यानी इसका कोर सतह से लगभग 6,378 किलोमीटर नीचे है।
जी बिल्कुल।
लेकिन अगर हम इंसानी पहुंच की बात करें तो दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा जो हमने खोदा है, रूस का कोला सुपर डीप बोरहोल, वो सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा है।
सिर्फ 12 किलोमीटर?
हाँ, मतलब 6,378 किलोमीटर की तुलना में सिर्फ 12, ये तो किसी सेब के छिलके को खुरचने जैसा भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो ज्वालामुखी फटते हैं उनका लावा भी तो केवल 30 से 60 किलोमीटर की गहराई से ही आता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। और 12 किलोमीटर के बाद तो ड्रिलिंग मशीनें ही काम करना बंद कर देती हैं।
क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है।
हाँ, गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि लोहे की मशीनें पिघलने लगती हैं। तो ऐसे में ये सवाल बहुत स्वाभाविक है कि जब हम पृथ्वी के अंदर जा ही नहीं सकते तो हमें कैसे पता कि 5,000 किलोमीटर नीचे असल में क्या उबल रहा है।
और यही वो पहेली है जिसे हमें आज सुलझाना है, क्योंकि हमारा मकसद केवल ये रटना नहीं है कि पृथ्वी की कितनी परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, बल्कि ये समझना है कि हम उन परतों के बारे में जानते कैसे हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि अगर हम वहां ड्रिल नहीं कर सकते तो वैज्ञानिक ये जासूसी कैसे करते हैं।
इसका जवाब ना भौतिकी के कुछ बहुत ही बुनियादी नियमों में छिपा है। जब सीधे देखने का कोई रास्ता नहीं होता तो वैज्ञानिक अप्रत्यक्ष सुरागों की तलाश करते हैं।
अप्रत्यक्ष सुराग मतलब इनडायरेक्ट क्लूज।
हाँ बिल्कुल। और इनमें सबसे बड़ा सुराग है घनत्व यानी डेंसिटी। अगर हम पृथ्वी की ऊपरी सतह की बात करें जिस पर हम चलते हैं, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, तो इसकी चट्टानों का औसत घनत्व पानी के मुकाबले लगभग 2.7 गुना होता है।
ठीक है, क्रस्ट का घनत्व 2.7 है, लेकिन पेपर्स में तो लिखा है कि अगर हम पूरी पृथ्वी के कुल द्रव्यमान और आयतन की गणना करें तो पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 आता है। ये गणित तो मिल ही नहीं खा रहा।
यही तो वो अहा मोमेंट है।
अच्छा,
पूरी पृथ्वी का औसत बहुत भारी है 5.5, तो इसका केवल एक ही तार्किक अर्थ निकलता है
कि पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच एकदम गहराई में कुछ ऐसा मौजूद है जो बहुत बहुत ज्यादा भारी है, तभी तो औसत खिंचकर 5.5 तक पहुंचेगा।
एकदम सटीक निष्कर्ष। ये भारीपनी हमें बताता है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वहां साधारण चट्टानें नहीं हैं,
बल्कि भारी धातुएं मौजूद हैं।
जी, इसके अलावा तापमान भी एक बड़ा सुराग है। खदानों में काम करने वालों ने सदियों पहले ही महसूस कर लिया था कि सतह से नीचे जाने पर गर्मी बढ़ती है।
मैंने पढ़ा था कि औसतन हर 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है।
बिल्कुल। तो इन गणितीय और भौतिक सुरागों को जोड़कर ही पृथ्वी के भीतर का एक पूरा वर्चुअल मॉडल तैयार किया गया है।
इसे पढ़ते हुए ना मेरे दिमाग में एक बड़ी अजीब सी एनालॉजी आ रही थी।
बताइए क्या?
ये बिल्कुल वैसा है जैसे बाजार से कोई बंद तरबूज खरीदना। तरबूज को काटकर तो नहीं देखते कि वो अंदर से लाल है या नहीं।
हाँ, दुकानदार काटने तो नहीं देगा।
सही बात है, हम बस उसे बाहर से थपथपाते हैं, उसकी आवाज, उसके वजन और उसकी गूंज से हमें अंदाजा लग जाता है कि अंदर का हिस्सा खोखला है, कच्चा है या एकदम ठोस और लाल है। मुझे लगता है वैज्ञानिक भी पृथ्वी के साथ बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। वे इस विशाल ग्रह को बस अलग अलग तरीकों से थपथपाकर अंदर का हाल जान रहे हैं।
अरे वाह, तरबूज वाली ये एनालॉजी इस प्रक्रिया को समझने के लिए सच में बहुत बेहतरीन है। हम सीधे नहीं देखते, हम बस प्रतिक्रियाओं का या गूंज का विश्लेषण करते हैं। अब अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं, तो वैज्ञानिकों ने इन शुरुआती सुरागों के आधार पर पृथ्वी को रासायनिक रूप से बांटने की कोशिश की थी। एडवर्ड स्वेज नाम के एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने 3 शब्द दिए थे, सियाल, सीमा और निफे।
हाँ, मैंने नोट्स में ये शब्द देखे थे और सच कहूँ तो ये मुझे किसी पुरानी केमिस्ट्री की किताब के भारी भरकम शब्द लगे। क्या आज के भूविज्ञानी अभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं?
आज के विज्ञान में ना इनका इस्तेमाल थोड़ा कम होता है, लेकिन इनका आधार समझना बहुत जरूरी है। सियाल का मतलब था सिलिका और एल्यूमिनियम, जो सबसे ऊपरी हल्की परत है।
अच्छा, सियाल मतलब SI और AL?
हाँ, और सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम, जो उसके नीचे की थोड़ी भारी परत है। और आखिर में नीफे यानी निकिल और फेरस, जिसका मतलब लोहा होता है, जो सबसे गहरा और भारी हिस्सा है।
तो स्वेस का मॉडल गलत नहीं था, बस वो ये बता रहा था कि अंदर कौन से रसायन हैं।
बिल्कुल, वो ये नहीं बता रहा था कि वे किस अवस्था में हैं, मतलब ठोस है, तरल है या गैस है।
और शायद इसीलिए आधुनिक विज्ञान ने पृथ्वी को एक नए मॉडल में बांटा, क्रस्ट, मेंटल और कोर।
जी,
जहां तक मैं समझ पाया हूं, क्रस्ट सबसे बाहरी ठोस परत है। महासागरों के नीचे ये बहुत पतली है, मुश्किल से 5 किलोमीटर, लेकिन महाद्वीपों के नीचे जहां हम रहते हैं ये औसतन 32 किलोमीटर गहरी है, और हिमालय के नीचे तो ये 70 किलोमीटर तक चली जाती है।
बिल्कुल सही।
लेकिन मुझे एक बात समझाइए, हमें ये कैसे पता चला कि 32 किलोमीटर बाद क्रस्ट अचानक खत्म हो जाता है और दूसरी परत यानी मेंटल शुरू हो जाता है? कोई वहां जाके टेप से नाप कर तो नहीं आया?
यहीं पर आपकी वो तरबूज को थपथपाने वाली बात वापस आती है।
अच्छा, वो कैसे?
1909 में मोहरोविसिक नाम के एक क्रोएशियाई वैज्ञानिक थे। वे भूकंप की तरंगों का अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज देखी।
क्या देखा उन्होंने?
उन्होंने पाया कि सतह से लगभग 30 किलोमीटर नीचे जाने के बाद भूकंप की तरंगों की गति अचानक से बहुत तेज हो जाती है।
गति तेज हो जाती है, इसका मतलब है कि वहां का जो पदार्थ है वो सतह के पदार्थ से बिल्कुल अलग है।
बिल्कुल, तरंगे घने और अलग तरह के माध्यम में ज्यादा तेजी से चलती हैं। तो तरंगों की गति में आए इस अचानक बदलाव ने ये साबित कर दिया कि वहां कोई अदृश्य सीमा है जहां चट्टानों का घनत्व एकदम से बदल जाता है।
तो इसी सीमा को हम आज मोहरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी या आम भाषा में मोहो कहते हैं।
जी बिल्कुल, मोहो सीमा। ऐसे ही अंदर और भी सीमाएं हैं, जैसे गुटेनबर्ग, जो मेंटल और आउटर कोर के बीच है, लेकिन मोहो सबसे पहली बड़ी खोज थी।
ये वाकई में जासूसी के स्तर का विज्ञान है।
तो क्रस्ट के बाद शुरू होता है मेंटल, जो करीब 2900 किलोमीटर तक गहराई में जाता है। और उसके बाद शुरू होता है पृथ्वी का सबसे रहस्यमय हिस्सा, कोर। लेकिन यहीं पर ना मुझे सबसे बड़ी उलझन हुई।
क्या उलझन?
नोट्स के अनुसार कोर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब ये तो सूरज की सतह जितना गर्म है।
हाँ, ये एक बहुत ही सटीक आंकड़ा है। कोर सच में उतना ही गर्म है। तो अगर ये इतना ज्यादा गर्म है और हमने अभी बात की कि तापमान बढ़ने पर चीजें पिघल जाती हैं, तो ये आंतरिक कोर या इनर कोर ठोस कैसे हो सकता है?
ये सवाल बहुत लाजमी है।
उसे तो उबलता हुआ खौलता हुआ तरल लावा होना चाहिए ना। ये कोई तर्क थोड़ी हुआ कि सूरज जैसी गर्मियां फिर भी सब कुछ एकदम ठोस पत्थर की तरह जमा हुआ है।
हाँ, मतलब पहली बार सुनने में तो ये किसी को भी हैरान कर देगा। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन यहाँ हम भौतिकी के एक दूसरे नियम को भूल रहे हैं, दबाव यानी प्रेशर।
अच्छा, प्रेशर?
हाँ, गहराई के साथ सिर्फ तापमान नहीं बढ़ता, बल्कि पूरी पृथ्वी का भारी भरकम वजन भी तो उस छोटे से केंद्र पर पड़ता है। आंतरिक कोर में दबाव लगभग 365 गीगा पास्कल आका गया है।
365 गीगा पास्कल? आम जिंदगी में इसे कैसे समझे, इसका क्या मतलब है?
इसे ऐसे समझिए कि सतह पर हम अपने ऊपर हवा का जो मामूली वायुमंडलीय दबाव महसूस करते हैं ना, ये उसका 30 लाख गुना ज्यादा है।
30 लाख गुना?
हाँ, अब जरा सोचे कोई भी चीज पिघलती कैसे है। पिघलने के लिए परमाणुओं को या एटम्स को फैलने और इधर उधर स्वतंत्र रूप से घूमने की जगह चाहिए होती है।
अच्छा, तो क्योंकि दबाव इतना ज्यादा है, मतलब 30 लाख गुना,
हाँ,
तो उन बेचारों परमाणुओं के पास फैलकर तरल बनने की जगह ही नहीं बचती।
एकदम सही पकड़े आप। ये अत्यधिक दबाव लोहे और निकल के परमाणुओं को इतनी बुरी तरह कुचलकर एक दूसरे से चिपका देता है कि वे हिल ही नहीं पाते।
बाप रे!
इसीलिए हजारों डिग्री तापमान होने के बावजूद वे तरल में बदल ही नहीं पाते और एक विशाल ठोस गोले के रूप में जमे रहते हैं।
ये सच में दिमाग के तार खोल देने वाला तथ्य है।
हाँ,
गर्मी पिघलाना चाहती है लेकिन दबाव उसे फैलने ही नहीं देता।
बिल्कुल, ये दोनों के बीच की एक जंग है।
लेकिन वापस उसी सवाल पर आते हैं, जब ये सब इतनी भयंकर गहराई में हो रहा है,
हाँ,
तो हमें इतनी बारीकी से ये सब पता कैसे चला? हमने मोहो सीमा की बात करते हुए भूकंपीय तरंगों का जिक्र किया था, शायद यही वो थपथपाहट रहे हैं।
यही वो सबसे बड़ा औजार है जिसने पृथ्वी का असली नक्शा हमारे सामने रखा है। मैं तो कहूंगी कि भूकंपीय तरंगे पृथ्वी का अपना अल्ट्रासाउंड है।
अल्ट्रासाउंड, ये अच्छा शब्द है।
हाँ, क्योंकि जब भी भूकंप आता है, जहां से ऊर्जा निकलती है उसे फोकस कहते हैं, और सतह पर उसके ठीक ऊपर वाले बिंदु को एपिसेंटर। वहां से ऊर्जा की तरंगे पूरी पृथ्वी के आर पार निकलती हैं। वैज्ञानिक मुख्य रूप से दो प्रकार की बॉडी वेव्स को मापते हैं, पी तरंगे यानी प्राइमरी और एस तरंगे यानी सेकेंडरी।
हाँ, और मैंने पढ़ा कि इन दोनों का व्यवहार एक दूसरे से बहुत अलग होता है। मेरी समझ से पी तरंगे किसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की तरह होती हैं।
सही कहा।
वे बहुत तेज होती हैं, ध्वनि तरंगों की तरह दबाव बनाती हैं, और उनके रास्ते में कुछ भी आए, ठोस चट्टान हो, तरल मैग्मा हो या गैस हो, वे बस उसे चीरती हुई आगे निकल जाती है।
ये एक्सप्रेस ट्रेन का उदाहरण बहुत सटीक है। पी तरंगे माध्यम को आगे पीछे धक्का देते हुए चलती है, इसलिए वे किसी भी चीज से बड़ी आसानी से गुजर सकती हैं।
लेकिन जो एस तरंगे हैं यानी सेकेंडरी वेव्स, वो मुझे किसी नखरेबाज लोकल ट्रेन की तरह लगी।
नखरेबाज लोकल ट्रेन?
आना, वो थोड़ी धीमी होती हैं और उनका एक सख्त नियम है, वे केवल और केवल ठोस चीजों से ही गुजरेंगी। रास्ते में जैसे ही कोई तरल या पिघला हुआ पदार्थ आता है, एस तरंगे वहीं दम तोड़ देती हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाती।
हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत रोचक है। एस तरंगे असल में शियर वेव्स होती हैं।
शियर वेव्स?
हाँ, मतलब वे माध्यम को ऊपर नीचे या अगल बगल हिलाते हुए चलती हैं। अब एक ठोस चीज में तो कड़कपन होता है, इसलिए लहर आगे बढ़ जाती है, लेकिन तरल चीजों में कोई पकड़ या कड़कपन नहीं होता।
तरल तो बह जाता है।
बिल्कुल, अगर आप पानी को बगल से धक्का देंगे तो वो बस बह जाएगा, वापस अपनी जगह पर लौटकर लहर को आगे नहीं बढ़ाएगा। इसीलिए एस तरंगे तरल में जाते ही गायब हो जाती हैं।
और एस तरंगों के इसी नखरे ने पृथ्वी का सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया, है ना?
है ना? मैंने पढ़ा कि जब भी कोई बड़ा भूकंप आता है तो दुनिया भर में लगे सिस्मोग्राफ उसे रिकॉर्ड करते हैं।
जी,
लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री और उसके आगे तक एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा होता है जहां एस तरंगे पहुंचती ही नहीं है।
मतलब पृथ्वी का लगभग 40% हिस्सा?
हाँ, इसे शैडो जोन कहा जाता है।
तो ये शैडो जोन बना कैसे?
यही तो वो ऐतिहासिक खोज थी जब भूवैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी के दूसरी तरफ एस तरंगे पूरी तरह गायब हो गई हैं, तो उन्हें एहसास हुआ कि पृथ्वी के बीचों बीच एक विशाल तरल महासागर जैसी कोई चीज है जिसने उन तरंगों को सोख लिया है।
ओह, तो यही वो सबूत था जिसने दुनिया को पहली बार बताया कि मेंटल के नीचे मौजूद बाहरी कोर यानी आउटर कोर पूरी तरह से तरल है।
बिल्कुल, अगर वो तरल नहीं होता तो एस तरंगे वहां से जरूर गुजरती और शैडो जोन बनता ही नहीं।
कमाल है, तो बाहरी कोर तरल है और हमने अभी बात की कि उसके अंदर का आंतरिक कोर ठोस है। ठीक है, यहां तक का लॉजिक तो बिल्कुल साफ है।
हाँ,
लेकिन अब मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा विरोधाभास आ रहा है।
बताइए।
अगर मेंटल पूरी तरह से ठोस है, जो कि 2900 किलोमीटर मोटा है, और तरल हिस्सा पृथ्वी के बहुत गहरे केंद्र में है यानी बाहरी कोर में,
हाँ,
तो फिर जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो जो उबलता हुआ लाल और तरल लावा जमीन से बाहर आता है वो कहां से आता है? बहुत से लोगों को, और सच कहूं तो पहले मुझे भी यही लगता था कि ज्वालामुखी का सीधा कनेक्शन पृथ्वी के उस उबलते हुए कोर से होता है।
ये शायद भूविज्ञान की सबसे आम और सबसे बड़ी गलतफहमी है।
सच में?
हाँ, ज्वालामुखी का लावा कोर से बिल्कुल नहीं आता। कोर तो सतह से हजारों किलोमीटर दूर है, जबकि मैग्मा, जो सतह पर आकर लावा कहलाता है, वो केवल 30 से 60 किलोमीटर की गहराई से आता है।
तो अगर मेंटल ठोस है तो वहां 30 किलोमीटर नीचे इतना सारा तरल लावा कैसे बन रहा है?
इसका जवाब मेंटल के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में छिपा है, जिसे एस्थेनोस्फेयर कहते हैं।
एस्थेनोस्फेयर?
हाँ, इसका ग्रीक में मतलब ही है कमजोर क्षेत्र। ये हिस्सा ठोस तो है, लेकिन ये प्लास्टिक की तरह थोड़ा लचीला है। यहाँ चट्टाने पिघलने के कगार पर होती हैं, एकदम उबलने को तैयार, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण पिघल नहीं पाती।
अच्छा, फिर से वही दबाव वाला खेल।
बिल्कुल। अब होता क्या है कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो एक अखंड छिलका नहीं है, वो कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेटें कहते हैं।
तो जब ये विशाल प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से दूर खिसकती हैं, तो जमीन में दरारें पड़ जाती होंगी।
बिल्कुल, और जैसे ही प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं, तो एस्थेनोस्फीयर के उस नीचे वाले हिस्से पर से दबाव अचानक कम हो जाता है।
ओहो, और हमने पहले ही स्थापित किया था कि दबाव ही वो चीज है जो उन चट्टानों को ठोस बनाए रखती है। तो जैसे ही दबाव हटा, वो गर्म लचीली चट्टान तुरंत पिघल कर तरल मैग्मा बन गई।
एकदम सही, इसी प्रक्रिया से मैग्मा बनता है और फिर दरारों से होते हुए वो सतह पर आ जाता है। इसीलिए दुनिया के ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी उन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें टकरा रही हैं या खिसक रही हैं।
जैसे कि वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर।
हाँ, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रशांत महासागर की प्लेटें दूसरी प्लेटों से टकरा रही हैं और दुनिया के 68% भूकंप और ज्वालामुखी यहीं आते हैं।
लेकिन मैंने देखा है कि ये लावा हमेशा भयानक विस्फोट करके ही बाहर नहीं आता।
हाँ, ऐसा हमेशा नहीं होता।
कभी कभी जब ये जमीन के अंदर ही दरारों में फंसकर ठंडा हो जाता है तो बड़ी दिलचस्प आकृतियां बनाता है।
हाँ, मैंने पढ़ा था डाइक के बारे में, जहाँ लावा जमीन की दरारों में किसी दीवार की तरह सीधा खड़ा होकर जम जाता है। पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ऐसी लंबी लंबी प्राकृतिक दीवारें दिखती हैं। हाँ, वे असल में पुराना जमा हुआ लावा ही है। और अगर हम इससे भी बड़े पैमाने की बात करें ना, तो कभी कभी दरारों से इतना सारा पतला लावा निकलता है कि वो विस्फोट करने के बजाय पानी की तरह हजारों किलोमीटर के इलाके में फैल जाता है।
पानी की तरह?
हाँ, बहुत पतला लावा, इन्हें फ्लड बसाल्ट प्रांत कहते हैं। भारत का जो दक्कन का पठार है, डेक्कन ट्रैप्स, वो इसका दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण है।
अरे वाह,
लाखों साल पहले वहां इतने विशाल पैमाने पर लावा बहा था कि उसने पूरे दक्षिण मध्य भारत को एक मोटी चट्टानी चादर से ढक लिया था।
ये सब सुनकर ना ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि क्रस्ट और मैंटल में कितनी हलचल है। ये कोई शांत जगह नहीं है।
बिल्कुल नहीं, बहुत सक्रिय हैं।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए वापस चलते हैं पृथ्वी के सबसे गहरे और रहस्यमयी हिस्से, यानी आंतरिक कोर पर।
इनर कोर।
अब तक की हमारी चर्चा से यही लग रहा था कि वो बस लोहे और निकल का एक बहुत गर्म, भारी और ठोस गोला है जो शांति से बस केंद्र में बैठा हुआ है।
ज्यादातर लोग यही मानते थे।
लेकिन नेचर जियो साइंस जर्नल में छपा एक हालिया शोध कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। इसमें तो जैसे भूविज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया है।
सच में ये शोध पिछले कई दशकों की हमारी समझ को पूरी तरह चुनौती देता है। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन विडाले के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने पिछले 20-30 वर्षों के भूकंपीय आंकड़ों का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया।
और उन्होंने क्या पाया?
उन्होंने पाया कि वो ठोस आंतरिक कोर जो आकार में हमारे चंद्रमा के 70% के बराबर है, वो स्थिर नहीं है।
स्थिर नहीं है?
जी हाँ, कुछ दशक पहले तक भूविज्ञानी ये मानते थे कि आंतरिक कोर पृथ्वी के बाकी परतों यानी क्रस्ट और मैंटल की तुलना में थोड़ी तेज गति से घूमता है।
मतलब अगर पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है तो कोर उससे थोड़ा ज्यादा घूम लेता है।
बिल्कुल, लेकिन इस नए अध्ययन से पता चला है कि पिछले कुछ सालों में कोर के घूमने की गति धीमी हो गई है।
धीमी हो गई है? इसका क्या मतलब है? क्या ये अचानक से उल्टा घूमने लगा है?
उल्टा नहीं घूम रहा है, ये अक्सर लोगों को भ्रम में डाल देता है। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप हाईवे पर एक कार चला रहे हैं और आपके बगल में एक दूसरी कार आपसे तेज चल रही है।
ठीक है।
कुछ समय बाद वो दूसरी कार अपनी रफ्तार कम कर देती है और आपकी कार से पीछे छूटने लगती है। वो कार अभी भी आगे ही जा रही है, लेकिन आपके मुकाबले वो धीमी हो गई है।
अच्छा, समझ गया। यानी अगर हम सतह पर खड़े होकर कोर को देख पाते तो पहले वो हमसे आगे निकल रहा था, लेकिन अब वो सतह की रफ्तार से पीछे छूट रहा है।
एकदम सही।
लेकिन ऐसा वो क्यों रहा है? इतने बड़े ठोस गोले की गति को जो चंद्रमा जितना बड़ा है उसे कौन बदल सकता है?
ये सब उस तरल बाहरी कोर के कारण है जिस पर हमने पहले बात की थी।
आउटर कोर?
हाँ, बाहरी तरल कोर लगातार बह रहा है और इसका प्रवाह उस ठोस आंतरिक कोर पर एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और चुंबकीय बल डालता है। साथ ही उसके ऊपर मौजूद भारी मेंटल भी उसे अपनी तरफ खींचता है।
तो आप इसे एक तरह की रस्साकशी समझ सकते हैं?
बिल्कुल, ये एक बहुत ही जटिल रस्साकशी है और इसी रस्साकशी के कारण कोर की गति में ये बदलाव आते हैं।
तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस गति के धीमे होने का हम पर यानी सतह पर रहने वाले इंसानों पर क्या असर पड़ेगा? क्या इसे कल से हमारे दिन और रात की लंबाई बदल जाएगी?
तकनीकी रूप से देखा जाए तो हाँ।
सच में?
जी। क्योंकि पृथ्वी का कुल कोणीय संवेग, जिसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, वो हमेशा संरक्षित रहता है। अगर कोर की गति बदलती है तो पूरी पृथ्वी के घूमने की गति पर उसका थोड़ा असर पड़ता है। इससे दिन की लंबाई में बदलाव आता है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बदलाव सिर्फ कुछ मिलीसेकंड का होता है, हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ये कभी महसूस भी नहीं होगा।
शुक्र है, लेकिन विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये मिलीसेकंड का बदलाव भी एक बहुत बड़ी गवाही है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि पृथ्वी का केंद्र कोई जड़ या निर्जीव पत्थर नहीं है, ये एक सक्रिय सांस लेती हुई मशीन की तरह है।
और यही वो मशीन है जो हम सबको जिंदा रखे हुए हैं।
वो कैसे?
क्योंकि बाहरी कोर के तरल लोहे के बहने और आंतरिक ठोस कोर के साथ उसके घर्षण से ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है,
मैग्नेटिक फील्ड।
हाँ, ये एक विशाल डायनमो की तरह काम करता है।
और वो चुंबकीय क्षेत्र ही तो हमारी पृथ्वी की ढाल है। अगर वो ढाल न हो तो सूरज से आने वाली खतरनाक विकिरण और सौर हवाएं पृथ्वी के वायुमंडल को पूरी तरह से नष्ट कर देंगी।
बिल्कुल,
मंगल ग्रह के साथ शायद यही हुआ था ना, उसका कोर ठंडा हो गया, डायनामो रुक गया, चुंबकीय ढाल खत्म हो गई और आज वो एक सूखा बंजर रेगिस्तान है।
एकदम सही कहा आपने। क्रस्ट से लेके कोर तक पृथ्वी की हर परत एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। प्लेटों के खिसकने से पहाड़ बनते हैं, ज्वालामुखी से नई जमीन बनती है, और हजारों किलोमीटर नीचे चल रहा वो तरल लोहे का प्रवाह हमारे आसमान को सुरक्षित रखता है।
तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने पृथ्वी के अंदर झांकने की इंसानी असमर्थता से शुरुआत की थी।
हाँ?
और हमने देखा कि कैसे वैज्ञानिकों ने भूकंप की तरंगों, घनत्व और दबाव के अप्रत्यक्ष सुरागों से पृथ्वी के अंदर के रहस्यों को खोला। लेकिन जाते जाते मैं एक विचार पर रुकना चाहता हूँ। ये कुछ ऐसा है जो शायद सबको थोड़ा परेशान कर दे, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करेगा।
वो क्या है?
हमने अभी जाना कि पृथ्वी का आंतरिक कोर लगातार अपनी गति और अपना व्यवहार बदल रहा है, और ये कोर हमारे चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित करता है।
हाँ,
तो अगर ये रस्साकशी ऐसी ही चलती रही तो भविष्य में इसका हमारे चुंबकीय ध्रुवों पर यानी मैग्नेटिक पोल्स पर क्या असर होगा?
ये सोचने वाली बात है।
क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल बाद पृथ्वी का उत्तर और दक्षिण ध्रुव अपनी जगह आपस में बदल लें, जिसे विज्ञान में पोल फ्लिप कहा जाता है?
ये एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। अगर ध्रुव सच में पलट गए तो हमारे सारे कंपास दक्षिण की तरफ इशारा करने लगेंगे। जो पक्षी और जानवर चुंबकीय क्षेत्र के सहारे हजारों किलोमीटर का प्रवास करते हैं ना, वे तो पूरी तरह से भटक जाएंगे।
और सिर्फ जानवर ही क्यों, हमारे सैटेलाइट्स, हमारा पावर ग्रिड, GPS, हमारा तो सब कुछ इसी चुंबकीय ढाल पर निर्भर करता है। ध्रुवों के पलटने के दौरान ये ढाल कुछ समय के लिए कमजोर पड़ सकती है।
बिल्कुल, और भूविज्ञान का इतिहास हमें बताता है कि पृथ्वी के जीवन काल में ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, बस अगली बार कब होगा ये कोई नहीं जानता।
और यही वो रहस्य है। अगली बार जब भी कोई जमीन पर चले तो उसे ये जरूर याद रखना चाहिए कि ये जमीन सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है। आपके पैरों के ठीक नीचे हजारों किलोमीटर्स की गहराई में एक शक्तिशाली मशीन लगातार काम कर रही है, अपने नियम बदल रही है और शायद अपना अगला बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। ये एक ऐसा विचार है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता।